हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है कृष्ण बलराम मंदिर में प्रातः काल के श्रीमद् भागवत के प्रवचन में। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय के अंतर्गत हम कुछ चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है और वृक्ष को जैसे बहुत मोटे मोटे शाखाएं होती हैं, ऐसे 12 स्कंद है भागवत के। स्कंद का मतलब शाखाएं, तो 12 मोटे मोटे स्कंद है। और अभी 2 स्कंद हम यहां एक बार पढ़ के, एक दो बार हुआ है लेकिन 2 स्कंद पूरे हुए, तीसरे स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। पहले स्कंद में 19 अध्यायों के अंतर्गत विशेष रूप से भगवान की कथा बोलने वाला वक्ता कैसा होना होता है और श्रोता का निरूपण किया गया है। सूत गोस्वामी वक्ता है, सनक आदि ऋषि श्रोता है, नारद जी वक्ता है, व्यास देव श्रोता है, और लेकिन मुख्य वक्ता सुखदेव महाराज है और मुख्य श्रोता परीक्षित महाराज है। तो ये विशेष रूप से पहले स्कंद में, और दूसरे स्कंद में सुनना क्या चाहिए, सुनने वाले की बात आई, सुनाने वाले की बात आई, तो सुनना क्या चाहिए, तो कैसे सुनना चाहिए, श्रवण की विधि श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और तीसरे स्कंद में श्रवण का विषय क्या होना चाहिए। अब श्रवण का विषय क्या होना चाहिए, तो श्रवण का विषय क्या होना चाहिए, यह तीसरे स्कंद से शुरू होता है। और 9 विषय का श्रवण करके दसवां जो विषय है उसका निरूपण करना है। तो दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भागवत के 10 विषयों का वर्णन है कि भागवत में 10 टॉपिक्स हैं, 10 विषय हैं। भगवत गीता में 5 विषय हैं, आत्मा परमात्मा काल प्रकृति और कर्म। भागवत में 10 विषय हैं, सर्ग विसर्ग स्थान ऊति पोषण मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय, ये 10 विषय हैं भागवत के। 9 विषयों के द्वारा 10वां विषय आश्रय, जो भगवान श्री कृष्ण है उसको समझना है। तो तीसरे स्कंद में विशेष रूप से सर्ग, सर्ग मतलब सृष्टि, सृष्टि का सर्जन, सर्ग मतलब सर्जन। और सृष्टि 2 प्रकार का सर्जन होता है, एक तत्व क्या तत्व सृष्टि के उत्पन्न होते हैं उसको सर्ग बोलते हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारा होता है, जो 16 विशेष रूप से तत्व है। और दूसरा प्रकृति होती है कर्म के आधार पर, जो ब्रह्मा जी करते हैं, जिसमें आकृति प्रकृति सबकी अलग होती है, रूप रंग अलग होते हैं, वो अलग अलग 84 योनियों का वर्णन है, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि, उसको विसर्ग बोलते हैं। लेकिन ये दोनों सर्ग या विसर्ग अंततोगत भगवान के ऊपर आश्रित है, नहीं तो कर्म से सब कुछ हो जाए तो फिर भगवान का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ये सृष्टि सर्जन भी भगवान के ऊपर आश्रित है, इस बात का निरूपण करने के लिए तीसरा स्कंद शुरू होता है। और तीसरे स्कंद में विशेष रूप से 2 विभाग हैं, 33 अध्याय, तीसरे स्कंद के 33 अध्याय, 33 सृष्टि में 33 विशेष देवता हैं, ब्रह्मा जो विशेष देवता है, अग्नि वायु दाता, ये 33 विशेष रूप से देवता मुख्य होते हैं। और प्रकृति के जिससे वन सृष्टि होती भी है वो घूम फिरा के 33 में जाके पूरे होते हैं, 4 प्रकार का बीज एक काल, ये सब मिलाएंगे तो 33 अध्यायों का ये तीसरा स्कंद है। 2 भगवान के अवतार इसके स्कंद के अंदर आएंगे, एक भगवान का अवतार क्रिया प्रदान है, जो अपने क्रिया करते हैं, ये वारह देव का अवतार है जो पृथ्वी को गर्भ सागर से निकाल के और तैयार करते हैं। तो उसके ऊपर सर्ग करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे, कोई स्थान होना चाहिए ना उसके ऊपर सृष्टि की जाए, तो स्थान के लिए पृथ्वी को गर्भ सागर से निकाल के बाहर लाते हैं वाराहदेव। और दूसरा ज्ञान प्रदान अवतार है जो कपिल देव महाराज फिर सृष्टि कैसे होती है इसका ज्ञान देते हैं। तो ये दो, अब ये कर्म और ज्ञान भी भगवान स्वयं नहीं दें तो फिर संसार में कैसे पता लगेगा कि ये चीज क्या है तत्व, इसका भगवान स्वयं ये करके। तो भगवत गीता में हमको मिलता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते फिर भी मैं करता रहता हूं कि लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो ये भी दोनों काम स्वयं भगवान अगर न करें तो फिर हम कैसे मान पाएंगे ये कहां से हो सकते हैं। तो ये दो अवतारों का वर्णन है। लेकिन ये सब समझने से पहले भगवान के महान भक्तों का वर्णन है, भगवान के महान भक्तों का वर्णन है। क्योंकि भगवान को जानने के लिए सबसे मुख्य वस्तु इस संसार में वो है भगवान का भक्त। भगवान के विषय में कुछ भी जानने की आपकी इच्छा हो तो एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं, केवल भगवान के भक्तों का संग। ये बात जीवन में पहले एक बार इसके ऊपर मोर लगा दो, स्टैम्प लगा दो, समय भगवान के भक्तों के, भगवान के विषय में समझना असंभव नहीं है। पुस्तक पढ़ने से नहीं समझ सकते हैं, दान देने से नहीं समझ सकते हैं, तप यज्ञ करने से नहीं समझ सकते, केवल केवल और केवल भक्तों के संग से, भगवत कृपा से भगवान के बारे में समझा जा सकता है। ये बात एक ठीक तरह जीवन में उतार लेनी चाहिए। अब भक्तों में भी संग कैसे भक्तों का होना चाहिए जिससे भगवान बहुत निकट में मिलेंगे, तो भगवत गीता के श्लोक का थोड़ा ध्यान करना चाहिए। मच्चित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कत्यंतस्य माम नित्यं तुष्यंति च रमंति च। मेरे भक्त तो ऐसे हैं हर समय मुझे अपने चित्त में धारण करके हुए घूमते हैं, उनके हृदय में मैं विराजमान रहता हूं, और थोड़ी देर के लिए भी अगर वो मेरे को न देखें तो प्राण त्याग देंगे। तो फिर कैसे रहते हैं? एक दूसरे को मेरी कथा सुनाते हैं और उसी में संतुष्ट रहते हैं, उसी में आनंद में मगन रहते हैं, केवल मेरी कथा सुनते और सुनाते हैं, और यही उनके जीवन का लक्ष्य। ऐसे भक्तों का संग मिलने से भगवान के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी संभव हो सकती है। तो ऐसे दो भक्तों के मिलन का वर्णन तीसरे स्कंद के पहले अध्याय से शुरू होता है, पहले चार अध्यायों में इसका वर्णन है। और ये दो भक्त विश्व विख्यात दो भक्त हैं। एक ऐसा भक्त है विदुर जी, और जिसकी महानता इस पहले अध्याय में बताई गई है कि उसने उस घर का त्याग किया था, साधारण घर नहीं था। किस घर का त्याग किया था, क्या थी उसके घर की विशेषता? साक्षात भगवान श्री कृष्ण बगैर निमंत्रण के, निमंत्रण नहीं दिया था लेकिन अपना घर समझ के उसमें आ गए थे। ऐसा घर छोड़ना कोई साधारण बात नहीं। तो दुख से परेशान होकर घर नहीं छोड़ा था, त्याग की वृत्ति से घर छोड़ा था। तो बाहर का त्याग तो हो गया, बाहर का त्याग तो ऐसे घर को छोड़ने से हो गया, अब आंतरिक त्याग होने के लिए अब तो गुरुजी के चरणों में बैठने की आवश्यकता थी। तो उसका मार्गदर्शन दूसरा भक्त मिलता है, वो करता है, और वो भी इतना भगवान के निकट था कि 5 साल का छोटा था तो भी भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम था, भोजन नहीं करता था जब तक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन न कर ले। और जिसके लिए भगवान अपने से ज्यादा, भगवान के तो षड गुण संपन्न है ना, तो उसके लिए 9 गुणों का वर्णन करते हैं जब उसको भेजते हैं वृंदावन में। तो उद्धव जी, उद्धव को भगवान कहते हैं, उद्धव और मुझ में कोई अंतर नहीं है, यहां तक कहते हैं उद्धव, उद्धव और मैं अंतर नहीं है, अपने वस्त्र आभूषण उद्धव को पहनाते हैं, इतना उद्धव से भगवान का प्रेम है। और ये दो भक्त आपस में मिले, और मिले भी कहां है, स्थान देखो जमुना का किनारा ब्रज के अंदर। तो मिले भी दो भक्त ऐसे हैं जिनके हृदय में कृष्ण भक्ति लबालब भरी हुई है, और मिले भी जमुना जी के तट पे हैं, जो कृष्ण प्रेम से अपने आप में, जिसमें कृष्ण भगवान ने नित्य क्रीड़ा की है, और आध्यात्मिक रूप से वो कालिंदी के रूप में जमुना से, भगवान की पटरानी भी है, उसके तट के ऊपर बैठकर इस ब्रज धाम में बहुत अच्छा समय भी है, और उन दोनों का आपस में मिलन हुआ है। अब विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं उद्धव से, और ये एक प्रश्न विदुर जी के द्वारा उद्धव से पूछा गया है, जो अब हम आज का श्लोक पढ़ेंगे। ये विदुर जी और उद्धव के बीच में बातचीत है। तो दो भक्तों के बीच में परस्पर बातचीत है कि किसके बारे में पूछना चाहिए ये प्रश्न मन में आना चाहिए, भगवान के बारे में या भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में या भगवान के भक्तों के बारे में। तो आज का प्रश्न भगवान के भक्तों के बारे में, कैसे भगवान के भक्त जो भगवान के साथ बहुत निकट के निज परिकर के रूप में संबंधित हैं, उन भक्तों का वर्णन आज हम सुनेंगे। जो प्रश्न पूछ रहा है उद्धव, और पूछ रहा है किससे, वो सारी पूछ रहा है विदुर, किससे पूछ रहा है, उद्धव जी से पूछ रहा है, इस वृंदावन में पूछा जा रहा है। तो इन प्रश्नों को सुनने के बाद आपका संकल्प ये होना चाहिए कार्तिक महीने में हम एक दूसरे से बात करेंगे तो केवल कृष्ण या कृष्ण के भक्तों के संबंध में बात करेंगे, बाकी सब बातें शांत, ये संदेश लेना चाहिए इससे। बाकी कुछ बोलेंगे तो फिर जीवित कैसे रह सकते हैं, प्राण निकल जाने चाहिए, ये भक्त की पहचान है। कृष्ण संबंधी प्रश्न नहीं है तो बेकार है जीवन, ये इन दो भक्तों से शिक्षा लेनी है। तो अब आज का श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक बोल रहा है विदुर, पूछ रहा है उद्धव से, और ये विदुर कब पूछ रहा है, ये विदुर तीर्थ यात्राएं सब करके आया है। तीर्थ यात्रा करने से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। तीर्थ यात्रा में क्या होता है, भगवान के लीला के स्थान होते हैं, भगवान के भक्तों के वहां निवास के स्थान होते हैं, उनके उस जगह पे जाने से वो स्थान अपने आप में पवित्र करने वाला है। वहां चर्चा करने से उन्हीं चीजों की चर्चा करेंगे जो वहां होंगी, तो उस चर्चा से अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो अब विदुर अवधूत के रूप में भ्रमण करता हुआ यहां आया है तो अंतःकरण शुद्ध ही हो गया है प्राय, अब तो तैयार है, जमीन तैयार है, अब तो केवल इशारे की जरूरत है और फिर भगवत तत्व को जानने में देर नहीं लगेगी। तो उद्धव जी उनको कहेंगे, और एक बात जब उद्धव कहेंगे तो विदुर जी के आंखों से अश्रु धाराएं बहने लग जाएंगी, बेवल हो जाएगा। जब उद्धव कहेंगे भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम जा रहे थे, उद्धव तेरा नाम लेके तुम्हें याद किया था, बहुत बड़ी बात है कि अंत समय भगवान जाते समय केवल तीन आदमियों से बात की, दारू को कहा तुम जाके अर्जुन को संदेश दो, उद्धव से कहा कि तुम जाओ बद्रीनाथ में मेरा प्रतिनिधि बनकर, और मैत्री जी को थोड़ा ज्ञान दे के कहा विदुर आएगा उसको ये शिक्षा देना, इतने ही नाम भगवान ने अपने मुख से लिए अंत समय में। तो विदुर ने जब सुना के भगवान उस वक्त मुझे याद किया तो विदुर जी की आंखों से अश्रु बह रहे हैं, रोमांच हो रहा है, हृदय में भगवान की स्मृति आ रही है। और प्रभुपाद जी भाव अर्थ में उस श्लोक के लिखते हैं, जब ऐसे कृष्ण कथा सुनते हुए हृदय से आंसू से अश्रु धाराएं बहने लगे तो समझ लें कि हृदय का मैल धुल के बाहर निकल रहा है, हृदय बहुत पवित्र होने लगता है। और विदुर जी हाथ पकड़ के कहते हैं जाओ मत उद्धव, क्या भगवान ने क्या बताया मुझे बताइए, अंत समय क्या संदेश दिया। विदुर ने कहा मैं निश्चित रूप से आपको बताता, लेकिन मेरे को तो भगवान के आदेश के अनुसार बहुत जल्दी जाना है बद्री का आश्रम, और दूसरा मुझसे वरिष्ठ भक्त वहां बैठा हुआ था मैत्रेय जी, वो व्यास देव के समकालीन भी हैं, और उनको विशेष रूप से आपके लिए आदेश दिया है, तो आप उनके शरण में जाकर प्रश्न पूछिए। तो दो मर्यादाएं विदुर ने रखी, एक तो भगवान की आज्ञा पालन में विलंब न हो जाए, और दूसरा अपने से वरिष्ठ व्यक्ति के पास भेजना, ये वैष्णव मर्यादा है। इन दो मर्यादाओं का रखते हुए फिर ऐसे कहा जा सकता है कि दोनों को जाना तो बद्रीनाथ जाएगा वो, तो भी तो हरिद्वार से होके जाएगा ना, तो दोनों साथ ही यहां से निकले, भाई जा ही रहे हो बद्रीनाथ तो हम साथ ही चलते हैं रास्ते में, तो कथा करते करते हरिद्वार तक जाते हैं और हरिद्वार में मैत्र जी से मिलेंगे, तब उद्धव उनके शरण में, और तब विदुर जी वहां बैठ जाएंगे, उद्धव जी आगे चले जाएंगे। ये संगति ठीक बैठती है कि अभी तुम चले जाओ, ऐसे क्यों, जाना ही वहां है तो साथ चलते हैं, भक्तों का संग क्यों छोड़ा जाए। तो आज के प्रश्न में भगवान के भक्तों के संबंध में कुछ मर्यादा की बातें विदुर जी पूछ रहे हैं, तो आइए श्लोक को पढ़ते हैं। कचेज करुणां परम सहजनो भामह स आसते सुखम अंग सौरी यो वै स्वशुरिणां पितृवद ददाति वरान् वदानयो वरतृप्पणेन हरे कृष्ण। इस श्लोक में कितने शब्द आपको आते हैं? इसका कुछ शब्द हैं जो आपको को अपनी भाषा में इसमें समझते में आते हो? कुरु नाम तो सबको आता है ना, कौरवों का, ठीक है। सौहृद भला चाहने वाला, और परम का मतलब महान भला चाहने वाला, ये तो तीन शब्द आते हैं ना, ठीक है। अब कचित का मतलब कैसे है होना चाहिए? जो कौरवों का भला चाहने वाला था वो कैसे है, ठीक है। ये पहली लाइन तो ठीक है। और अपने आप को कौरवों में खड़ा करना चाहिए ना, पूछने विदुर को, विदुर है तो व्यासदेव के द्वारा उत्पन्न धृतराष्ट्र का और पांडु का भाई और समकालीन उनके बराबर उम्र का है, एक आधे दिन का फर्क है, कोई कम फर्क अंदर ज्यादा अंतर नहीं है। पुनः का मतलब हमारा, ठीक है। तो पहली लाइन ठीक है। अब दूसरी लाइन में जो शब्द है सुखम का अर्थ सबको आएगा, सुख से है, लेकिन अब किसके बारे में पूछ रहा है ये जरा हमको खोज लगानी चाहिए। कौरवों का सुहृद कौन है? बहुत अति सुहृद, परम सुहृद कौरव, हम कौरवों का जो है। और पूछ कहां के लिए रहे? पूछ रहे हैं द्वारका के लिए, द्वारका के लिए पूछ रहे हैं, द्वारका वासियों के प्रति पूछ, क्योंकि इससे पहला भगवान श्री कृष्ण के लिए पूछा है, अब पूछेंगे तो उनके लिए पूछेंगे। वो पूछते हुए कहते हैं एक शब्द है भाम, भामह सह, तो भाम का अर्थ होता है बहनोई, भाम का अर्थ है बहनोई, ठीक है। अब बहनोई हमारा सुख से है ना, और सौरी कहने से बहनोई का नाम बहुत क्लियर हो गया, सौरही सौरसिंह के बेटा, क्या नाम? वासुदेव, वसुदेव के लिए पूछ रहे ना। सौरी शब्द आने से तटस्थ सौरी प्रचोदयाती है, दसम स्कंद भागवत में आया, ये सौरवीर सौरसिंह का बेटा भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा के ले गया, तो सौरी से क्या अर्थ हो गया? वसुदेव। अब अंग एक शब्द है, अंग विदुर जी, अंग उद्धव जी के लिए संबोधन है उद्धव को, हे उद्धव। अब हे उद्धव हो गया अंग, अंग क्या हो गया? उद्धव जी। अब जब बहनोई बोल दिया तो बहनोई की जरा प्रशंसा करनी चाहिए ना। अब प्रशंसा क्या करते हैं? स्वश्री नाम बहन, पितृवद पिता के समान, जो अपनी बहन को पिता के समान देखभाल करता था। बहन का भाई बड़ा भाई है तो पिता के समान उसकी देखभाल करता था, किस बात में करता था? वरम वदाने, बड़ी उदारता से देता रहता था बहन को, समय समय के ऊपर देता रहता था जैसे देने की आवश्यकता है। साथ में क्या किया? वर तृप्णेन, और अपनी पत्नियों को भी संतुष्ट रखता था। ये बहुत बड़ी टेक्निकल बात कह रहा है विदुर जी, पत्नियों को संतुष्ट रख के अपनी बहन को देना, ये बहुत बड़ी कला है, ये साधारण बात नहीं है। पत्नी नाराज भी नहीं हो और बहन को भी दिया जा सके, ये बहुत बड़ी कला है, सब में नहीं आती है। लोग कहते हैं रक्षाबंधन भाई को बांधते हैं, लड़की भाई को बांध, रक्षी भाई को बांधते हैं, देखने भाभी को एक एक देगी कि नहीं, संभाल तो सब उसका है। तो ये बहुत बड़ी चतुराई का प्रश्न है। और इतना जो अब एक पत्नी हो तो कोई समस्या नहीं है, 16 पत्नियां हैं वसुदेव जी की, 16 को प्रश्न रखने के बाद अपनी बहन कुंती को पिता के समान समय समय के ऊपर हर चीज दे रहा था और सबको प्रसन्न रख के, वो हमारा बहनोई वसुदेव कैसे है? सुख से है ना। अब इस श्लोक का अर्थ ठीक है, समझ में आ रहा? कोई परेशानी नहीं इस श्लोक का अर्थ में समझने में? शब्दों में भामने का मतलब बहनी हो, बहनोई हो गया, सोचनी बहन हो गया। और वर तृपणे, ये वर पत्नियों के लिए है। वैसे वर का मतलब जिसको वर्ण किया जाए, तो स्त्री वर्ण करती है वर को, वर और वधु। तो ये वर तृप्याणी अपने स्त्रियों को जो तृप्त रखता था या संतुष्ट रखता था। तो ये बात, ये श्लोक का अर्थ है। अब इसका अर्थ पढ़ लें, आइए। हरे कृष्ण। विदुर जी क्या कह रहे हैं देखिए। विदुर जी कहते हैं, कृपया मुझे बताइए कि कौरवों के सबसे बड़े मित्र हमारे बहनोई वसुदेव कुशलता पूर्वक तो हैं, ठीक है, वे अत्यंत दयालु हैं। ये दयालु शब्द, इसमें एक और शब्द है, हमने उसको चर्चा नहीं की, आपको आना चाहिए, वदन्या। वदन्या शब्द आए तो आपके दिमाग में कौन आना चाहिए? महाप्रभु, नमो महावदन्या। जो उधारता से देता हो उसको वदन्या कहते हैं। बहुत उधारता हो, जितना है उससे ज्यादा देने की क्षमता है, अपने लिए कुछ नहीं रखता है, उसको वदन्या कहते हैं। तो हम तो जेब में हाथ डालते हैं भगवान की आरती में डालने के लिए, ऐसे देखते हैं 10 का निकला है कि 100 का है। 10 का है तो ठीक है, 100 का बड़ा नोट आ गया तो यहां धक धक होने लगता है। तो ये वदन्या नहीं है, ये अदन्य है। देने की इच्छा नहीं है लेकिन देखा देखी में देना पड़ता है। सब दे रहे हैं तो देना है ना, तो ये देखा देखी वाला देना अदन्य है, देने की इच्छा नहीं है। वदन्य क्या मतलब? ऐसे हाथ डाला, जो कुछ है दे दो, ऐसे जेब बाहर निकलना चाहिए, कुछ नहीं, ऐसे लोग देखे कुछ नहीं है, जो था दे दी, ये वदन्य हो गया। तो वदन्य का मतलब दिल खोल कर देना। हरे कृष्ण। तो ये वदन्य शब्द के लिए यहां लिखा है, दयालुता से। लेकिन वे अपनी बहनों के प्रति पिता तुल्य और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते थे, उनको प्रसन्न रखते थे। ये है इनका अनुवाद। तो ठीक है, ये श्लोक समझ में आया। इसमें एक पूछने की कला भी आ गई कि कैसे पूछना चाहिए। तो भगवान के बारे में पूछा पहले, इससे आगे वाले श्लोक में भगवान के बारे में पूछा, अब भगवान के बहुत निकट के, जिसको भगवान ने अपना पिता वसुदेव जी को स्वीकार किया है, उसका कुशल मंगल पूछ रहे हैं। तो ये पूछने की शैली है। तो वसुदेव जी का क्या पूछ रहे हैं वसुदेव के बारे में, कि है तो हमारे बहुत मित्र, हमारे कौरवों के बड़े हितेशी है, ये बड़े कौरवों के हमारे हितेशी हैं, बड़ा हमारा मंगल चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं। और अब इसके भारत में प्रभुपाद ने एक बात लिखी है, वो बहुत से हम भक्तों के लिए नई जानकारी है, लेकिन जानना, जब सुनेंगे तब जानेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की 16 स्त्रियां थी और उनमें से एक का नाम पूर्वी था, पौर्वी, और पौर्वी का दूसरा नाम रोहिणी। बलराम जी की माता रोहिणी है ना, उसका दूसरा एक नाम पौर्वी है। ये वसुदेव जी की एक पत्नी है। और ये पत्नी कौन है, ये जरा सुन लीजिए बलराम जी, वो विदुर जी की बहन थी। ये जरा नई जानकारी है प्राय भक्तों को, इस हो सकता है किसी ने भागवत में कभी पढ़ा हो तो भी ध्यान में न रहा हो। तो रोहिणी विदुर जी की बहन है, प्रभुपाद जी यहां ऐसे लिखते हैं। तो फिर बहनों ही हुए वसुदेव जी, और दूसरी रीत से कैसे बहनों ही हुए वो बात करते हैं। और वसुदेव जी की बहन कुंती हमारे भाई पांडु को दी हुई थी, तो वो भी तो बहन थी, बहनों ही हुआ। तो ऐसे भी हो सकता है, पहले राजा महाराजाओं में जब कोई समृद्धिशाली शक्तिशाली पड़ोसी राजा होता था तो उनके साथ ऐसे अपनी कन्या देकर दूसरी कन्या लेके और वो बनाया जाता था दो राजाओं के बीच में घनिष्ठ संबंध, ताकि दूसरे किसी को हमारी तरफ आंख उठाने की हिम्मत न हो। तो कौरवों ने यादवों के संग में ये बहुत एक संबंध स्थापित किया था। तो ऐसे लग रहा है कि पांडवों ने अपनी बहन रोहिणी दिया वसुदेव जी को, और वसुदेव ने अपनी बहन दिया पांडु को। तो ऐसा इसमें लगता है, और उसमें फिर दोनों एक दूसरे के सौहृद हो ही जाते हैं, और ये बात फिर देखने की मिलती है कि ये बहुत अच्छा आपस में एक संगठित संबंध हो गया था। तो ये शैली उस समय में ऐसे रही थी रजवाड़ों के में, बड़े बड़े राजाओं के बीच में। तो आगे कहते हैं, इसलिए वसुदेव जी विदुर जी के बहनोई हो गए, और वसुदेव जी की बहन कुंती पांडु के घर में थी, और विदुर बड़ा भाई था, और ऐसे भी वसुदेव उनके बहनोई हुए। तो पहले इस बात को सिद्ध कर रहे हैं प्रभुपाद जी, वसुदेव विदुर जी के बहनोई कैसे हुए। उद्धव को जानकारी थी, लेकिन उद्धव वसुदेव से छोटा है और विदुर से छोटा है, आयु में उद्धव छोटा है, विदुर बड़े हैं। तो बड़ा जब पूछता है छोटे से, तो उस मर्यादा से पूछता है। उद्धव ने प्रणाम किया है विदुर जी को, फिर एक दूसरे से गले मिले हैं, और तब ये विदुर जी पूछ रहे हैं। अब उद्धव जी के किसके बारे में पूछ रहे हैं? उद्धव जी के चाचा के बारे में पूछ रहे हैं। वो देवभाग और वसुदेव दोनों भाई हैं, और उद्धव देवभाग का बेटा है, तो उद्धव जी के चाचा के बारे में ही पूछ रहे हैं। अथवा कह रहे हैं, तुम मेरे बहनोई के भतीजे हो, तो मेरे ही भतीजे हो, ये भाव भी एक अपना संबंध निकट का बोल के पूछ रहे हैं कि आपस में दो भक्त भी हैं, तो दो आपस में जैसे ताक, जैसे बाप बेटे का संबंध, ऐसा संबंध भी बताने का इसके अंदर वो ध्वनित हो रहा है कि अगर वसुदेव जी हमारे बहनों ही है, तो आप तो वसुदेव जी के भतीजे हो ना, तो हमें बहुत प्रिय हो। ये भाव भी एक प्रियता का भाव, जैसे हम कब आपस में कभी मिलते हैं, अरे कोई हम कहीं बाहर हो और केवल तिलक वाला और धोती में कोई मिले, तो हमारे इस्कान का है, तो लगता है अपना बहुत सगा संबंधी मिल गया। कहीं और जगह में ऐसे कोई भक्त मिल जाए, किसी दूर दूसरे देश में, कौन से मंदिर में, अरे दिल्ली से, हमें तो दिल्ली में रहा था, तो वो उसको जानते हैं, हाँ उसको जानता हूं, हाँ तो मैं उसके साथ रहा हूं, तो वो संबंध के द्वारा और घनिष्ठता आती है, तो आदमी दिल खोल कर बोलता है। नहीं तो घर की बातें किसी को कोई बताता नहीं है, घर की बातें हैं ना। अब विदुर जी से ये पूछे, वसुदेव के अपनी पत्नियों को खुश रखते थे, अब कैसे कोई अपने घर की बात दूसरे को बताएगा। तो पहले उतनी घनिष्ठता होनी बतानी चाहिए कि हम आपस में कितने संबंध, हमारा कितना गहरा है, और तभी आदमी दूसरा बताए कि भाई आप दिल्ली मंदिर से आए हैं, आप दिल्ली मंदिर मोहन रूपा जी को जानते हैं? हाँ जानता हूं, वो प्रेसिडेंट है, उसके साथ तो हम सेवा करते हैं। अच्छा अच्छा, हम तो बहुत साथ उनके रहे हैं, फिर तो उसका दिल कहेगा अच्छा कोई बात नहीं। तो फिर कहने के लिए दिल खुलता है, नहीं तो आदमी सब बातें कह दे, ये जरूरी नहीं है। तो ये भी एक शैली है बोलने की, जिसमें दूसरे आदमी के दिल खोलने के लिए उसमें उदारता हो कि वो दिल खोल के बात करे। और दोनों की स्थिति ऐसी है कि एक घर छोड़ के आया हुआ है अपनी इच्छा से, और दूसरा भारी दिल से अपने सारे परिवार को आंखों के सामने प्रलय जैसे, प्रलय जैसा दृश्य देख के आया है प्रभास क्षेत्र में, जहां यदुवंश के सारे ही यदुवंशी एक दूसरे से लड़के समाप्त हो चुके। तो वो दृश्य देख के आया है, और उस दृश्य देखने के बाद अपने इष्ट मित्र और अपने मालिक भगवान श्री कृष्ण से भी जुदा होकर आया है, तो उद्धव कितना भारी हृदय से गया होगा। और ऐसा दुखी आदमी को कोई पूछे तो कहेगा भाई मेरे को छोड़ो, अब मेरे को ले मी अलोन, ऐसे उस वक्त आदमी बात करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उद्धव आ रहा है, तो उससे कुछ उनके बारे में पूछने से अपने बहुत घनिष्ठता बतानी जरूरी है कि हम आपके हैं। और जब ऐसे होगा तो फिर धारावाहिक उसके मुख से फिर जैसे ना कोई ऐसे पेच खुल जाने से, अंदर से जो टूटी खुल गई तो पानी बहने शुरू हो जाता है। तो विदुर जी कह रहे हैं, इसको सुना ना, मेरे भार दिल का हल्का हो जाएगा, ये हमारा अपना है, इसके सामने अगर मैं बोलूंगा तो मेरे दिल के ऊपर जो अभी भार है ना, वो हल्का हो जाएगा। और और ऐसे ही फिर उद्धव जी ने धारावाहिक कृष्ण कथा बोलना शुरू कर दिया। तो ये मानो उसकी दिल का दरवाजा खोलने के लिए, ताकि, और एक भाव ये भी होता है बड़े का, जब बड़ा छोटे से मिलता है तो उसको देखने से पता लग जाता है कि दुखी तो नहीं, दुखी होता तो चेहरा बता देता है, तो उसका दुख दूर करने के लिए भी उसको अपनाना, हृदय से लगाना और आस्ते आस्ते उनकी दिल से ये बात निकालना, ये बहुत बड़ी कौशल है और ये भक्तों के अंदर बहुत अति आवश्यकता है। बहुत से भक्त भी छोटी छोटी बातों के वजह से एक दूसरे के प्रति विरोध के भाव लेके अंदर में उनकी भक्ति में बहुत बड़ा अवरोध आ जाता है, रुकावट आती है। तो कोई सौहृद की तरह जरूर भक्तों के ऊपर सर हाथ रख के बैठ के पूछने वाला हो, कैसे तुम्हारा जब ठीक चल रहा है, तुम्हारे मंदिर में अच्छी तरह से तुम्हारा चल रहा है ना काम, तुम्हारी सेवा तुम्हारी ठीक चल रही है ना। तो ऐसे करते करते वो दिल से बोलेगा, क्या सेवा तो कर रहे हैं लेकिन वो भक्त से ऐसे मुझे परेशानी, ऐसे परेशानी, तो उसकी दिल खुलेगी, तब उसको कुछ मार्गदर्शन कर सकते हो। जैसे भाई किसके पास जाओ तुम्हारी समस्या का समाधान होगा, तो उसकी भक्ति में वो आगे बढ़ सकता है, तब वो दूसरे का उद्धार करेगा। अब विदुर को जब उद्धव बताएगा, उसके बाद विदुर जाएगा कहां, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर जाएगा विदुर। और ये विदुर की महानता को देखिए, जिस दरवाजे से ठुकरा के निकाल दिया गया था, रात को नींद नहीं आ रही थी धृतराष्ट्र को, विदुर को बुलाया, विदुर क्या करना चाहिए, कृष्ण भी वापस चले गए, संधिदूत बन के आए थे, अब क्या होगा। विदुर ने कहा, मेरे भाई आपने अपने बेटे दुर्योधन को ऐसे पकड़ लिया है कि आप तो अब डूबने वाले हैं, इसको कोई नहीं बचा सकता है, आपको उसको नहीं छोड़ोगे तो निश्चित रूप से आप कुल सहित डूब जाओगे। धृतराष्ट्र का मतलब है दूसरे के राष्ट्र को हड़प कर दे, पराये को मेरा बना दे, तेरा तेरा मेरा कर दे। पांडु ने कहा, मैं थोड़े दिन के लिए जाता हूं, तू जरा कारभाव काम देखना राज का, तुम देखना काम, तुमको मैं पीछे छोड़ के जाता हूं देखभाल करने के लिए। लेकिन देखभाल करते करते इतनी अच्छी कुर्सी लग गई कि जब छोड़ने का समय आया तो छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है। ये बहुत, ये दूसरी एक बड़ी शिक्षा हमको ग्रहण करनी चाहिए। कभी कोई चीज अपनी हमारे पास रख के जाता है ना कि मैं वापस आके आपसे ले लूंगा, तो उसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो आदत पड़ गई तो फिर देने के समय मन के अंदर सौ आप क्या करोगे, अब आपको जरूरत है क्या इसकी। एक ब्राह्मण एक बार जा रहा था तीर्थ यात्रा के, उसके घर में गाय थी, गाय दूध देने वाली थी, पड़ोसी के घर में गाय दे दी, बोला इसको आप संभालना, एक महीना लगेगा, मैं हरिद्वार से आऊंगा फिर आपसे गाय ले लूंगा। तो गाय दे गया तो गाय का दूध निकाले, तो घर वाली बोले लाओ ना दूध है अपने घर में काम आएगा। वो जाके बाहर बोला, नहीं ये कुत्ती है, इस कुत्ता है, इसको पिला देता हूँ, ये बाहर पशु कुत्ते को रोज पिला दे। घर वाले बोले, क्यों भाई घर में दूध देखभाल हम गाय की कर रहे हैं, दूध हम हमको पीना चाहिए ना। बोला आप इसका जिद मत करो, अब मेरे को देने दो बाहर। महीने के बाद जब वापस आया तो गाय मांगने आया, गाय दे दी, क्योंकि उसने आसक्ति दूध में रखी नहीं। गाय चली गई तो वो कुत्ती बार में बहुत चिल्लाने लगी, भाऊ बहुत सारा दिन रोए नहीं। घर वाले को बोला, देखो देख रही उसका हाल। बोला हाँ ये चिल्ला रही है। बोला तुमने पिया होता दूध तो अब तुम्हारा ये हाल होता। वो तुम्हारे पास रख के गया था ना, और उसका तुमने सुख लेना शुरू किया तो फिर छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। और धृतराष्ट्र ने तो बैठ के उसका सुख ले लिया गधे का, तो गधे का और गधे का सुख एक जैसा ही है। वो लात मारेगा ही मारेगा, ये पक्का सुख, थोड़ा ही अंतर है, लात जरूर मारेगा। ये बहुत सावधान होना चाहिए, त्याग भाव से रहे तो ठीक है। तो दुर्योधन को तुम्हें त्याग देना चाहिए और पांडवों को उनका अधिकार दे, इसलिए मैं दुर्योधन अपने चार ओर ये चार की चौकड़ी, और उसमें कौन था, कंधार से आया हुआ अफगानिस्तान का आतंकवादी शकुनी, और उसके संग में था करण अंगराज, जिसको बहुत बड़ा द्वेष था अर्जुन से, विशेष रूप से जल रहा था उस आग में, और दुर्योधन का भाई दुशासन, ये चार चंडालों की चौकड़ी थी ये कौरवों के पक्ष में। और इनका अपराध क्या है, कभी एक बार हमने यहां बताया होगा, भगवान समभाव है। दो बातें बताता हूं, भगवान समभाव है उसकी। पहली बात यह है, भगवान ने दोनों को धर्म दिया था, धर्मराज दिया, पांडवों को युधिष्ठिर के रूप में दिया, कौरवों को विदुर के रूप में दिया। विदुर भी तो धर्मराज है, 100 साल के लिए उसको केवल ये शाप था कि सूदर के गर्भ से उत्पन्न हुआ। तो दोनों को धर्मराज तो भगवान ने समान दिया। अब पांडवों ने धर्मराज की आज्ञा का पालन किया, और कौरवों में ये चार ही थे जो धर्मराज को मानने को तैयार नहीं थे। तो धर्मराज की बात न मानना, धर्म की बात न मानना, ये हमारे को स्वतंत्रता है। नहीं मानने वाला दुर्योधन जैसा होता है, मानने वाला अर्जुन जैसा हो गया। दोनों में अंतर ये, धर्म तो भगवान ने समान दोनों को दिया था ना। भागवत में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन महाभारत में दूसरी तरह से एक बात लिखी हुई है। परीक्षित मां उत्तरा के गर्भ में अश्वस्थामा के ब्रह्म अस्त्र से शांत हो चुका था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस पूरे युद्ध में अभी तक जो हुआ है 18 दिन में, अगर मेरा कौरवों और पांडवों के बीच में द्वेष भाव नहीं रहा हो तो ये बालक उठ जाए। महाभारत में ऐसे लिखा है, और बच्चा उठ गया। तो भगवान ने यह सिद्ध किया कि मेरा द्वेष नहीं था कौरवों से, मेरा उनकी और इनके प्रति में कोई, मेरे भाव दोनों से दुश्मन और दोस्त के नहीं थे, मैं तो समभाव से था। और ये अगर सत्य है तो ये बच्चा उठ जाए, और परीक्षित जीवित हो गया। तो ये कृष्ण तो समान भाव से दोनों को मार्गदर्शन कर रहे। अब ये चार जो अंदर आए, आते ही सुना कि दुर्योधन का त्याग कर दो, ये कह रहा है धृतराष्ट्र को। विदुर जी बोले, कलंक है तो चाचा हमारे ऊपर, दासी पुत्र है ना, निकलो यहां से, तुम्हारे प्राण ही केवल छोड़ रहे हैं, ये हमारी मेहरबानी है कि तुम्हारा संबंध हो, नहीं तुम्हें मार दिया होता हमने, निकलो यहां से। ये शब्द विदुर के लिए बहुत बड़े लाभदायक हुए कि उसके हृदय में त्याग हो गया एकदम। क्या रखा है इस संसार के अंदर, एक दिन तो तिरस्कृत होना ही है ना। विदुर जी दरवाजे से बाहर निकले, भाई को प्रणाम किया, अपना धनुष बाण दरवाजे के ऊपर रख दिया। क्यों रख दिया? बोला इसलिए रख दिया कि मैं कौरवों का पक्ष छोड़ के जाता हूं, अब पांडवों के पास नहीं जाऊंगा, मैं कोई दल बदलूंगा नहीं, उनकी तरफ से आपसे लड़ूंगा, यह मेरा उद्देश्य नहीं है, अब लड़ाई नहीं करनी है। अब यह धनुष बाण यहां है, मतलब मैं लड़ाई नहीं करूंगा, अब तो मैं आत्म साक्षात्कार के लिए हस्तिनापुर का ही त्याग करके जा रहा हूं। निकल गए हस्तिनापुर से, आपने सुना भ्रमण किया हुआ, सारे तीर्थों का भ्रमण किया, और जब मैत्रेय जी से ज्ञान प्राप्त होकर जीवन सार्थक हुआ तो पहले परोपकार किसका करने के लिए निकले। बहुत बड़ी विदुर का महानता इस बात में, जिस दरवाजे से धक्के दे के निकाल के गया था, उसी दरवाजे के, उसी धृतराष्ट्र के उधार के लिए हस्तिनापुर में वापस लौट के आए कि इस भाई का अब उधार करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद भक्त के हृदय में द्वेष भाव रहता नहीं है, किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता है। जहां से तिरस्कृत हुआ है वहां से भी, वहां भी जाके प्रेम का प्रदर्शन करता है। तो इसलिए प्रचार तब हम कर सकते हैं, दूसरे का उद्धार तब कर सकते हैं, जब उसके हृदय से जैसे वो सब भाव बाहर निकल आए, तब हम भक्तों का बड़ा देखभाल कर सकते हैं। तो आगे यहां दो बातें प्रभुपाद जी ने लिखी हैं। कुंती वसुदेव की छोटी बहन थी, और बड़े भाई के नाते उसका ये धर्म था, उसका ये कर्तव्य था, उसका दायित्व था कि वो अपनी छोटी बहन को बेटी के समान देखभाल करे। जब भी कोई जरूरत है कुंती की, वो बड़ी उदारता के साथ वसुदेव ने पूरी की, बड़ा प्रेम किया अपनी बहन के साथ। और साथ में प्रेम अपनी बहन को संतुष्ट रखने के साथ साथ अपने पत्नियों को भी कभी असंतुष्ट नहीं होने दिया। प्रभुपाद ने लिखने की वही शैली लिखी है, अपनी पत्नी को प्रसन्न रखते हुए अपनी बहन को हर समय हर वस्तु टाइम पे देता रहा। प्राय होता ऐसे था पहले कि बेटी का अधिकार अचल संपत्ति में नहीं होने का अर्थ यह था कि विवाह के बाद समय समय के ऊपर पिताजी उसको शादी से लेकर हर उत्सव में, हर त्योहार पे, हर बड़े दिन पे देता ही रहता था, और पिताजी के न रहने के ऊपर बड़े भाई का ये कर्तव्य होता था। तो प्रायः बड़े भाई पत्नियों के कहने में आकर ये कार्य को रोक दिया करते थे। ये लगता है उस जमाने में भी ऐसे होता होगा, तब अभी तो होता ही है। इसलिए विदुर जी कहता है, विदुर जी कह रहे हैं, उसने 16-16 पत्नियों को संतुष्ट रखते हुए अपनी बहन को कभी भी अभाव, अपने पिता के अभाव का कभी एहसास होने नहीं दिया। इतनी उदारता के साथ उसने कुंती का, और विशेष रूप से प्रभुपाद अंत में यह भी लिखते हैं, और उस विशेष स्नेह इसलिए कुंती के ऊपर भी था कि छोटी उम्र में वो विधवा हो गई थी। पांडु किसी से कारण रहा नहीं संसार में, तो बहुत ही वसुदेव की प्रेरणा से, कृष्ण की प्रेरणा से विदुर पांडवों की रक्षा करता रहा। तो ये संबंध कि कुंती की हर समय में वसुदेव ने उसको पिता का अभाव का अनुभव होने नहीं दिया, ये भाव यहां प्रकट कर रहे हैं प्रभुपाद जी। सेम टाइम लिखते हैं, वसुदेव नेवर डिससेटिस्फाइड हिज वाइव्स, कभी भी अपनी पत्नियों को असंतुष्ट नहीं किया। एट द सेम टाइम, और साथ साथ में जो भी जरूरत की चीजें थी अपनी बहन को देते रहे। इस विशेष रूप से कुंती के प्रति विधवा होने के कारण बहुत प्रेम था, और जब वसुदेव के विषय में पूछ रहा है विदुर, तो ये सारे संबंध उसके हृदय में, हृदय के पटल के ऊपर प्रभुपाद जी कहते तैर आए हैं, और वो सारा जैसे फिल्म का सीन चलता है ऐसे उसके हृदय में चल रहा है कि कैसे वसुदेव कुंती के प्रति स्नेह का भाव रखता था। तो यहां प्रभुपाद जी का भावार्थ पूरा होता है, घंटी भी बज गई है, तो यहां कथा को समाप्त करते हैं। आपको इसमें से क्या समझना है आज के दिन में कि कार्तिक महीने में आपस में बात कृष्ण संबंधी या भक्तों के संबंध में करनी है, बाकी बातें नहीं करनी है, और कहीं भक्त कोई मिल जाए और प्रेम से पूछना है तो जरा उसका दिल खोलने के लिए, अपने प्रेम बताने के लिए कोई संबंध उसके साथ अपना स्थापित कर लेना चाहिए, तभी वह हृदय खोलेगा। और गृहस्थों के लिए जरूरी ये संकेत है कि भाइयों को, अपनी शादीशुदा बहनों को, बड़े भाई को पिता के समय देखभाल करना चाहिए, ये उसका अधिकार है, कोई उसके ऊपर मेहरबानी नहीं है, दान नहीं दे रहे हो, उसका जो अचल प्रॉपर्टी नहीं दिए धन, तो उसको समय समय के ऊपर अंत समय तक उनके बेटी बेटियों के विवाह तक भी आपको देना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। और ये आप जब भागवत में इसका उल्लेख है, इसका मतलब भगवान के द्वारा ये अनुमोदित है, तब यहां लिखा है, और भगवान के बड़े भक्त इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो पारिवारिक ये रिश्ते भी ईमानदारी से निभाने चाहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद।